गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, आपका परिवार ठीक होगा। स्वागत करता हूं मैं आपका इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है क्राइम फ्लिक्स। उम्मीद है आपको पहली जो कहानी हमने शुरू करी उसका पहला एपिसोड पसंद आया होगा। आज का ये दूसरा एपिसोड, फाइनल एपिसोड, कहानी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे कि रिवाज है, मैं आपको एक क्विकली न्यूज़ अपडेट देना चाहता हूँ। आज से ठीक दो या तीन दिन पहले रात के अंधेरे में उत्तर प्रदेश के लोगों ने कुछ ऐसा देखा जो शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। अचानक आसमान में रात के अंधेरे में एक रोशनी उन्हें दिखाई दी जो एक सीरीज में थी, एक लाइन में थी, जैसे ट्रेन चलती है वैसे। उसके बाद काफी लोग जो है वो पैनिक कर गए। किसी ने कहा ये UFO है, कोई कह रहा है कि नहीं, शायद ये ड्रोन है जो पड़ोसी मुल्क है वो हम पे शायद नजर रखे हुए हैं। बहरहाल ये सब अफवाहें थी, रूमर्स थे। इसके बाद जो खबर निकल के आई वो ये थी कि दरअसल ये लाइट्स जो है वो कुछ और नहीं बल्कि ये सैटेलाइट थे, स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स। स्टारलिंक, जैसे आपको पता ही होगा, एलन मस्क की कंपनी, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था ये कि वो इंटरनेट के जो प्रोसीजर्स हैं, टेक्नोलॉजी, उसमें काफ़ी अच्छा काम करे और उन्होंने किया। जो स्टारलिंक जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं थ्रू सैटेलाइट। काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस है, अभी 40 कंट्रीज जो हैं वो ले रही हैं। अभी हाल ही में जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है उसमें जो यूक्रेन है उसके तरफ जो है एलन मस्क, उन्होंने कहा कि हम आपको इंटरनेट देंगे और इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो आज यूक्रेन जो है वो स्टारलिंक के थ्रू कर रहा है। एशिया में भी एक ऐसा देश है जो इसे यूज़ कर रहा है, उस देश का नाम है फिलीपींस। फिलीपींस एकमात्र देश है अभी फिलहाल एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में भी, जो इस टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज़ कर रहा है, सर्विसेज का यूज़ कर रहा है। सो बहरहाल क्या होता है ना कि जब ये इंटरनेट सैटेलाइट जब ये हवे में छोड़े जाते हैं, ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं, सो इनका दो राउंड होता है। एक फर्स्ट राउंड में ये जो ऑर्बिट के काफ़ी बाहर होते हैं और सेकंड राउंड में ये थोड़े से नज़दीक आ जाते हैं क्योंकि इनकी क्रैश लैंडिंग करानी होती है हर 9 महीने में। तो इससे पहले भी पंजाब में 2021 दिसंबर में ऐसी रोशनी दिखाई दी जिसे लोगों ने पहले UFO समझा, उसके बाद बातें क्लियर हुई, चीज़ें क्लियर हुई और साफ हुई। सो ये थी न्यूज़ अपडेट। चले चलते अपनी कहानी की ओर। जैसे कि कहानी का, जैसे मैंने आपको बताया, रहस्य या टाइम ट्रैवल, एक शख्स कैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ जाता है और उसका पासपोर्ट देखने के बाद सारे दंग हो जाते हैं। सो बहरहाल जब ये सीनियर्स ऑफिसर्स जब इस शख्स को बुलाते हैं, इसकी जांच करते हैं और उसके बाद उन जो एक सीनियर ऑफिसर था वो कहता है उनसे कि आप बताइए आप कौन से देश से आए हैं। सो वर्ल्ड मैप जो है वो टेबल पे रखा जाता है। उसके बाद वो उनको बुलाते हैं और पूछते हैं उनसे कि बताइए आप कहाँ से आए हैं। सो जो शख्स है वो देखता है वर्ल्ड मैप को काफ़ी गौर से और बगैर ज़्यादा समय लिए बस एक नज़र उन्होंने देखा वर्ल्ड मैप को। उसके बाद तुरंत उन्होंने अपनी जो उंगली है वो एक जगह पे रख दी और कहा कि मैं इस देश से आया हूँ, टॉयलेट यहाँ पर है। अब जब उन्होंने ये बात बोली तब सारे दंग रह गए, शौक रह गए, बिकॉज टॉयलेट तो अभी भी एक शायद कोई काल्पनिक देश था इनके लिए। लेकिन जब उस शख्स ने बताया कि कहां पर वो एक्चुअली रहता है, वो जगह कोई और नहीं, एक देश का नाम जिसका नाम है एंडोरा, ANDORA। एंडोरा ये यूरोप में एक बहुत छोटी कंट्री है। आज 2022 में इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 80,000 होगी और मात्र 470 किलोमीटर स्क्वायर का उसका जो है वो एरिया है। और दिलचस्प बात यह है कि जो ये एंडोरा है वो सिचुएटेड है पहाड़ों के ऊपर, जैसे नेपाल है वैसे। और ये जो बॉर्डर, जो पहाड़ जो है वो स्थित है बॉर्डर पे, स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे। सो जैसा नेपाल वैसा ही एंडोरा, बहुत छोटा देश। और वो भी दंग रह गए कि यार ये तो एंडोरा है। उन्होंने कहा कि आप जिस देश का नाम बता रहे हैं वो टॉयलेट नहीं बल्कि एंडोरा है। सो जो शख्स है अभी वो चौक गया, वो कहा कि नहीं ये कैसे हो सकता है, ये कहाँ का नाम ले रहे हैं आप, एंडोरा मैंने तो कभी सुना नहीं, मैं तो टॉयलेट से आया हूँ। आप मेरा पासपोर्ट देख लीजिए, मैंने हर जगह पे जो मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं इसी पासपोर्ट के साथ करता हूँ और यही मेरे देश का नाम है। सो बहरहाल जो ऑफिसर्स हैं वो समय लेते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो उनसे भी सीनियर ऑफिसर से इस बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये काफ़ी क्रूशल बात थी। कोई अजनबी आपके देश में आ जाता है जिस देश का आपने शायद नाम ही ना सुना हो कभी, और कंटिन्यूसली वो कहता है बकायदा उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कि वो उस देश का नागरिक है और वहीं से आया है और वो घूमते रहता है ये सब वगैरह। सो चालू जब ये हो जाता है, जब ये शुरू हो जाता है, सो डिसाइड करते हैं अथॉरिटीज़ कि उसे एयरपोर्ट से बाहर ना, मतलब एयरपोर्ट कैंपस के बाहर ना जाने दें, उसे जापान में ना जाने दें। और पहले तो उससे पूछताछ होती है, इसमें मैं चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जब ये जब अपना देश वो शख्स बता रहा होता है तब सारे उस चीज़ को एक्सेप्ट, मतलब नॉट ओवरऑल बट पार्शली वो एक्सेप्ट कर लेते कि ठीक है आपका कोई ऐसा देश है काल्पनिक उनके हिसाब से, जैपनीज के हिसाब से। तो उसे तहकीकात करने के लिए उस इंसान को बुलाते हैं, उस शख्स को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप मुझे आप क्या करने आए हैं जापान, और आप मतलब यहाँ कौन से ऐसी चीज़ है, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कोई दस्तावेज है जो इस वजह से आप जापान में आए हैं, आपका अकोमोडेशन का प्रूफ बताइए, आपने कहाँ रहने का जो है वो डिसाइड किया हुआ है। सो जो शख्स है वो बताता है कि होटल का नाम बताता है और वो कहता है कि मैं इस होटल में मेरी बुकिंग है, और इस कंपनी का नाम बताता है, कंपनी का जिसे वो कहता है कि मेरी इनके साथ बिजनेस डील है और मैं इनसे मिलने वाला हूँ, हमारा काफ़ी अच्छा बिजनेस है इनके साथ में बहुत सालों से। सो सारी चीज़ें वो नोट कर लेते हैं और बाकायदा जो बंदा है उसको वो भेज देते हैं अथॉरिटी के, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास में जो एक होटल उनका अवेलेबल होता है वहाँ पर। और जो होटल था वो एक्चुअली कैसा था कि क्योंकि वो अथॉरिटी का था सो वहाँ पर ज़्यादा बालकनी नहीं, और वैसे भी जापनीज जो घर है आपने देखे ही होंगे फिल्म वगैरह में तो काफ़ी मतलब संकरे होते हैं, बिल्कुल चिपक के होते हैं, ज़्यादा कुछ उनका जो वेंटिलेशन जो सिस्टम होता है वो ज़्यादातर विंडो से होता है और वो बालकनीज ज़्यादातर नहीं रखते हैं। सो होटल में बालकनी नहीं, अंदर जाने का सिर्फ एक रास्ता, वो है दरवाज़ा। उसके बाद वो बोलते हैं कि ठीक है आप जब तक हम आपकी जांच नहीं कर लेते, जब तक ये क्लियर ना हो जाए कि आपके देश का नाम क्या है, आप कौन है, आप हमारे इस एरिया में रहेंगे, इस होटल में रहेंगे ऑथराइज्ड। सो शख्स जो है वो मान लेता है, उसके बाद वो चले चलता है उस होटल की ओर। और उससे पहले जो है वो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो उसके डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है और क्योंकि ये काफ़ी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी क्रूशल चीज़ें थी, इस वजह से जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो रख लेते हैं ऑफिसर्स। उसके बाद जो सीनियर अथॉरिटी उनके साथ ये डिस्कस किया जाता है ये सारी चीज़ें, उनके बाद जो सीनियर ऑफिसर थे उनके भी सीनियर ऑफिसर। तो वहाँ से एक बात निकल करके आती है कि लेट्स सी, तहकीकात करते हैं हम इस आदमी की, क्या ये जो बोल रहा है, क्या जो ये कह रहा है ये सही में ऐसा ही है या कुछ और। क्योंकि जो सीनियर अथॉरिटी थी वो तो थोड़ी सी शॉक थी ही, लेकिन जो सीनियर उनसे भी जो सीनियर थे वो उनका ये कहना था कि शायद ये कोई शातिर है, कहीं का बहुत बड़ा शातिर है जो ये सारी चीज़ें कहानी बुन रहा है। सो इसकी एक तहकीकात करते हैं। तो वो एक टीम भेजते हैं उस होटल में और उस कंपनी में जिस कंपनी का उन्होंने नाम बताया था उस शख्स ने, और उस होटल में भी जाने के बाद वहाँ पे एक अजीबो गरीब चीज़ सामने आ जाती है। दरअसल वहाँ पर जब ये टीम पहुँचती है और उस बिल्डिंग में जब वो एंटर करती हैं जहाँ पे उसका दफ्तर था, उस बिजनेस का जिसका उसने नाम बताया था, वहाँ पर जाने के बाद उनको पता चलता है कि ये शख्स जो है उनसे उस बिजनेस का, उस बिल्डिंग का कोई वास्ता नहीं, उस दफ्तर का कोई वास्ता नहीं, ना कोई रिकॉर्ड्स, ना कोई ऐसी बातें। वहाँ के जो स्टाफ थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे साथ ऐसा कोई बिजनेस डील नहीं है इस देश के साथ में, इस देश के किसी बंदे के साथ में जिसका आप नाम बता रहे हैं टॉरेट, ये तो नहीं। और उन्होंने क्रॉस चेकिंग के लिए एंडोरा से के लिए भी पूछा कि एंडोरा से आप किसी का, सो उन्होंने कहा कि नहीं, एंडोरा से भी ऐसा कोई हमारा खास बिजनेस किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ में नहीं है। वहाँ पे सीनियर जो है उनका शक थोड़ा और बढ़ने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको लगा ही था कि ये कोई फाउल प्ले कर रहा होगा, शातिर है, महाशातिर। उसके बाद वो जाते हैं उस होटल में जहाँ पे उसकी बुकिंग थी, वो भी उनको चेक करते हैं और होटल वाले भी साफ इनकार कर देते कि नहीं, ऐसी किसी बंदे की कोई चेकिंग हमारे होटल में नहीं है, हमने किसी को ऐसा रूम जो है वो अलॉट नहीं कर रखा। अब ये सब करते करते शाम हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली वो जब आया और ये सारी चीज़ें पूछताछ और आगे की जो प्रोसीजर्स, शाम होगी और डिसाइड करा कि अगले जो सुबह है उस पर हम डिसाइड करेंगे। अथॉरिटी वाले ने ये सोचा कि अगले रोज़ हम इस पर डिस्कस करेंगे और इसके जो क्रेडेंशियल्स है, क्रेडेंशियल्स है उसको हम फिर से वेरीफाई करेंगे। बहरहाल शाम हो जाती है, रात हो जाती है और जिस होटल में उस बंदे को रखा गया था, जिस रूम में, वहाँ पे सिर्फ दरवाज़ा एक एंटर करने का, कहीं कोई बालकनी नहीं। उसके बाद एक सिक्योरिटी अफसर जो है वहाँ पे डोर के पास में रखा जाता है 24 घंटे के लिए कि आप इस पे नज़र रखें, ये कहीं बाहर ना जाएं। उसके बाद होती है अगले दिन की सुबह, हमेशा की तरह जो सीनियर्स है वो अपने काम पर आते हैं। उसके बाद इन लोगों से, जो ये बंदा था, जो शख्स था, उससे उनको पूछताछ भी करनी होती है। वो आते हैं नीचे अथॉरिटी के सेंटर पे, उसके बाद वो पूछते हैं और वो जो जिस शख्स को उन्होंने रखा था बाहर एज अ सिक्योरिटी, वो कहते हैं कि आप उसे ले आएँ, उसे कहें कि आप तैयार हो जाएं और आप चले हमारे साथ में ऑफिशियल्स, मतलब ऑफिस में हमको आपसे और बातें करनी है। तो जब ये बंदा ऊपर जाता है फिर से, और उसके बाद जब ये अंदर जाने के लिए नॉक करता है डोर, सो डोर कोई कुछ आवाज नहीं, कुछ नहीं, दरवाजे को तोड़ा जाता है क्योंकि ऑलरेडी 2-3 बार ये नॉक कर चुका है, उसके बाद कोई आवाज नहीं आ रही अंदर से। दरवाजे को तोड़कर जब अंदर जाते हैं तब सब हैरान हो जाते हैं। जो शख्स अंदर, जो पुलिस वाला जो अंदर जाता है उसे बुलाने के लिए, वो खुद दौड़कर बाहर आ जाता है और वो अपने ऑफिशियल, अपने सीनियर से कहता है कि सर वो बंदा गायब है। और साथ ही साथ जब ये खबर सुनते हैं तब सारे जो लोग हैं वो ऊपर चले जाते हैं, उसके रूम पे देखते हैं, जाते हैं, तहकीकात करते हैं। तब उन्हें लगता है कि उन्होंने सब सारा जगह देख लिया, बाथरूम वगैरह, लेकिन वो बंदा कहीं नहीं मिलता। और गौरतलब है कि जो शख्स था वो तो गायब है ही यहाँ पर, साथ ही उसका सामान वो भी गायब है। उसके बाद बुलाया जाता है सीनियर्स को, पुलिस वालों को, सारी पूछताछ शुरू हो जाती है, देखते हैं पॉसिबिलिटीज कि ये कहाँ गया बंदा, क्योंकि बालकनी तो थी नहीं, सारा रूम पैक्ड और 24 घंटे बाहर एक आदमी, उससे पूछताछ करते, वो भी कहता कि नहीं सर मैंने किसी को अंदर बाहर जाते हुए नहीं देखा। उसके बाद थोड़ा ये टेंशन में आ जाते हैं स्टाफ। उनमें से एक जो ऑफिसर था वो कहते हैं कि सर जो बंदा था उसका, जो गायब हुआ वहां से, उसके जो क्रेडेंशियल्स और जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ऑलरेडी एयरपोर्ट पे उन्होंने सिक्योर करके रखे थे एक दिन पहले, मतलब जिस रोज वो आया था उस दिन। पासपोर्ट जमा, अब तो क्योंकि पासपोर्ट उसका जमा है तो वो बगैर पासपोर्ट के तो कहीं जाएगा नहीं। उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स, वीजा वगैरह सब उन्होंने जब्त कर लिया था एयरपोर्ट पे ही। सो वो वापस जाते हैं एयरपोर्ट और देखते हैं। उसके बाद वो जाते हैं उस रूम में, उस कमरे में जहां पे उसके दस्तावेज रखे हुए थे, और ड्रॉर खोल के बाहर निकालते हैं। जैसे ही वो ड्रॉर खोलते हैं, शख्स जो है, जो पुलिस वाला था, वो हैरत अंगेज तौर पे सबसे ये कहता है कि यहां उसका पासपोर्ट नहीं है। अब सारा स्टाफ, सारे लोग, पुलिस वाले सब चौंक जाते हैं कि जहां उन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखे थे वो तो उस जगह से भी ज्यादा सिक्योर था जहां पे वो रह रहा था, होटल से ज्यादा। अब सुरक्षा घेरे को तोड़कर कोई इतने डॉक्यूमेंट्स अगर ले जाए ऐसा तो मुमकिन नहीं, लेकिन वो वहां से हैरतअंगेज तौर पर गायब थे। अब यहां पर 3 चीजें, एक तो बालकनी में, जिस होटल में वो ठहरा बालकनी में कोई नहीं, जो शख्स था वो गायब, उसके सामान गायब, और उससे भी बड़ी बात, जो उससे भी ज्यादा सिक्योरिटी में उसके डॉक्यूमेंट्स रखे थे वो भी गायब। अब ये क्या था? हालांकि उस वक्त दौर पे, उस दौर पे ये सारी चीजें जब छपने लगी, जब लोगों को पता चलने लगा ऐसा कुछ हुआ है, तो काफी सारे क्वेश्चंस भी आए उस दौर पे। उस टाइम पे कुछ लोगों ने कहा कि ये कोई बंदा था जो शायद टाइम ट्रैवल करके हैनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया हो। कुछ लोगों का मानना था कि ये एक पैरेलल यूनिवर्स से आया हुआ एक बंदा था, जहां सब कुछ हम जैसा ही, बस देश अलग। लेकिन वो जो भी था, एक बंदे का आना और गायब हो जाना यूं ऐसे अचानक, ये आज भी एक रहस्यमय स्थिति बनाए रखता है। इवन टोक्यो में ये फेमस स्टोरी है। आपके कोई फ्रेंड या कभी आप जाए टोक्यो में, तो आप उनसे पूछिए कि कभी ऐसा कुछ हुआ था यहाँ पे, तो वो बताएंगे, बिकॉज आज भी ये लोगों की जुबान पे है। आज भी लोग 2022, आज से तकरीबन 68 साल पहले 1954 में घटित एक घटना जो आज तक लोगों के जुबान पे है, वो टोक्यो की यही है। और इसके ऊपर काफी सारे आर्टिकल लिखे गए, पेपर में भी बहुत कुछ आया, इसके ऊपर एक कहानी भी लिखी गई, एक किताब भी लिखी गई, डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज, जहां तक मुझे लगता है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज करके एक किताब है जो लिखी है इसी कहानी के ऊपर। सो बहरहाल आज भी ये रहस्य है कि ये क्या था और कैसे था, अभी तक ये सुलझा नहीं है। और ऐसी कई कहानियां टाइम ट्रेवल से जुड़ी हुई हम सुनते हैं, लेकिन ये जिसका एक प्रूफ है, रिकॉर्ड पर है, मुझे लगा कि ये कहानी आपको सुनानी चाहिए, आपको शायद पसंद आए इस बारे में। सो ये था एपिसोड नंबर 2 का अंत, यहाँ कहानी होती है समाप्त, और मैं आपसे मिलूंगा एक नई कहानी नए एपिसोड के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, और सुनते रहें, फॉलो करते रहें, शेयर करते रहें क्राइम फ्लिक्स। धन्यवाद।